ये महाराज कैसे हम बड़े प्रेम से लाए ये प्रसाद, तो क्या इस प्रसाद में मेरा दिल नहीं उड़ेला है तो ये प्रसाद उनको स्वीकृत नहीं है। चलो थोड़ी देर बैठो, ध्यान भजन करो, ध्यान भजन करके मेरा दिल आचार्य के प्रति अहोभाव से जब भर जाएगा तब इस प्रसाद को निहारूंगा और ये प्रसाद धरूंगा तो मेरा दिल उड़ेला हुआ होगा। एक आदमी जो चला गया और अशांत हुआ और दूसरा आदमी जाकर बैठा ध्यानमग्न हुआ और थोड़ी देर के बाद फिर आकर प्रसाद धरा, गुरु ने स्वीकार कर लिया, रख लिया, वो गदगद हो गया कि मेरा सब कुछ प्रसाद स्वीकार हो गया। तीसरा एक साधक आया, उसने कुछ पत्रम पुष्पम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए धरे, गुरु ने उसमें से थोड़ा लिया, थोड़ा उसे वापस दिया। वो सोचता है कि उसका तो सब कुछ ले लिया कि मेरा तो कुछ वापस लौटा दिया है, जरूर मेरे में वापस लेने का भाव होगा अथवा तो गुरु ने मेरे को उन्नत करने के लिए शायद दिया होगा। तो उचित अर्थ लगाने वाले साधक, गुरु का जो भी व्यवहार आचार्य का होता है कल्याण के लिए होता है ऐसा समझकर उन्नत होते हैं, और जो मनमुख हैं वो थोड़ी थोड़ी बात पर अपनी कलुषित इच्छाएं, अपना कलुषित मन लेकर उन आचार्यों को तोलते रहते हैं। ऐसे महापुरुषों को जीवित काल में प्राप्त करने के बाद भी जो अपने महान तत्व को नहीं पाते तो वो शिष्य नहीं, सतशिष्य नहीं, वे शिष्य तो कहलाते लेकिन उनमें शिष्यत्व नहीं आता, शिष्य तो कहलाते लेकिन शिष्यत्व नहीं आता। जब सतशिष्यत्व नहीं आता तो सद्गुरु तत्व का भी अनुभव नहीं होता। आचार्य आचार्य तो कहलाए लेकिन गुरु जैसे माँ वात्सल्यता से भरकर बच्चे की उन्नति चाहती है, ऐसे जो गुरु लोग अपने चरणों में आए हुए, अपने निकट आए हुए लोगों की उन्नति नहीं चाहते हैं तो वे गुरु तो कहलाते हैं लेकिन उनमें गुरु तत्व नहीं होता है। जो शिष्य अपने नियमों का पालन नहीं करता तो वो शिष्य तो कहलाता है लेकिन शिष्यत्व नहीं आता, शिष्यत्व नहीं आता तो गुरुत्व भी उनमें नहीं खिलता है। और गुरु में अगर गुरु तो कहलाते और गुरु तत्व नहीं है तो गुरु में भी वो सामर्थ्य नहीं आता, बेपरवाही नहीं रहती, गुरु में वो मांग बनी रहती कि आज मुझे शिष्य ये दे दे, मैं ऐसा कुछ करूं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो उसमें शिष्यों की दास्ता बनी रहती है। शिष्यों की दास्ता बनी रहती क्यों कि अंदर में आत्मभाव, आत्मबल अथवा परहित का पूर्ण पूर्ण नहीं है तो कुछ न कुछ चाहिए। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश, जो जग की आशा करे जग गुरु वो दास। वो आचार्य में दासत्व रहता है, जिस आचार्य में दासत्व होता है उसको भगवान की निगाह से देखा जाए, ब्रह्मवेताओं की निगाह से देखा जाए तो वो आचार्य पढ़ लिख कर पदवी आचार्य की पा ली लेकिन उसके चित्त में आचार्य पद अभी प्रकट नहीं हुआ है। तो आचार्य उपासना जीवन में उन लोगों को नितांत आवश्यक है। भक्ति मार्ग में तो केवल भगवान के प्रति श्रद्धा है, साधक यात्रा कर सकता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में श्रद्धा के साथ तत्परता चाहिए, आचार्य उपासना चाहिए, उपदेश चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में भगवान जब साधु संतों का आगता स्वागता करते हुए संतों के चरण धुलाते तो एक त्रिकाल ज्ञानी आचार्य ने कहा कि हे कन्हैया, हम तुम्हें जानते हैं, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण बोलते कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय शुद्ध तो होगा लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटेगा। तुम्हारे जैसे आचार्यों की, तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेताओं की दो मुहूर्त की सेवा से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। तो अज्ञान मिटाने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए आचार्य उपासना की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रह्मज्ञान के रास्ते, साक्षात्कार के रास्ते, जीते जी मुक्ति के अनुभव के रास्ते चलने वाले साधक को ब्रह्मवेता गुरुओं के नितांत आवश्यकता पड़ती है। रामकृष्ण परमहंस काली की उपासना तो करते हैं, उपासना करते करते काली प्रकट भी होती है, उनके हाथ का भोजन भी ले लेती है, बात भी करती, फिर भी रामकृष्ण को तोतापुरी गुरु की आवश्यकता पड़ती क्योंकि जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है। भारत में ऐसे महान पुरुष हुए जिन्हें निर्विकल्प समाधि में मंत्रों के रहस्य प्राप्त हुए और मंत्र रचने का सामर्थ्य भी आया, तो कई मंत्र स्रष्टा ऋषि हुए, कई मंत्र दृष्टा ऋषि हुए और कई मनन करके आत्मदेव को पाने वाले मुनि हुए। जो मनन करके आत्मपद को पाए उन्हें मुनि कहा जाता है। तो उन महापुरुषों के बिखरे हुए अनुभवों को, बिखरे हुए मंत्रों को एकत्रित करके, सूत्र बद्ध करके जनता जनार्दन की सेवा की, वे भगवान वेदव्यास व्यास पूर्णिमा के दिन लाखों लाखों सतशिष्यों के द्वारा और सतगुरुओं के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं मन से। ये व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, जन्म जन्मांतर से भटकते, माताओं के गर्भों में अटकते, पिताओं के शरीरों में भटकते, माताओं के शरीरों में लटकते ये जीव जब मनुष्य तन में आते हैं तो उनके जीवन में ज्ञान भक्ति और योग का प्रसाद भरकर उनकी योग्यता ऐसी कर देते हैं शास्त्र और आचार्य भगवान के वचनों से, शास्त्र के वचनों से और अपने अनुभव से कि ये जीव फिर माता के गर्भों की पीड़ा सहने का जो दुर्गम मार्ग है उससे वो बचकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। जो परम पद के अधिकारी बनाने वाले वेदव्यास जी महाराज जैसे ब्रह्मवेता गुरु हैं, उन गुरुओं को याद करके अपने चित्त को पावन करने का दिन गुरु पूनम का दिन ये उत्सव नहीं है, ये तपस्या का दिन है, व्रत का दिन है। इस दिन आचार्य उपासना और आचार्य के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन में कुछ नियम और व्रत लेने का दिन है कि मेरे मन में ये कमियां है, मेरे व्यवहार में ये कमियां है, मेरे जीवन में ये कमियां है, तो उन कमियों को निकालने के लिए हम कर सकें उस प्रकार का कोई व्रत, कोई नियम, कोई जप अनुष्ठान आदि का नियम लेकर आगे की यात्रा करने का संकल्प करने का दिन है। वर्ष भर में जो हमने साधन भजन किया और जो कुछ अनुभूतियां हुई उससे आगे बढ़ने का संकेत पाने का दिन है। व्यास पूर्णिमा के बाद ये आध्यात्मिक संस्कृति की स्कूलें खुलती, नए पाठ शुरू होते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में पृथ्वी सूख जाती और व्यास पूर्णिमा के इर्द गिर्द वृष्टि होती और पृथ्वी में नया चेतन आता है, वृक्षों में नया जीवन आता है, ऐसे व्यास पूर्णिमा साधक के जीवन में नई आध्यात्मिक चेतना, नया जीवन, नया प्रकाश, नया आनंद और नया उल्लास लाकर नवनीत जीवन के तरफ प्रेरणा देने वाला ये पर्व है। इस पर्व से जीव आत्मा परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न कर सकता है। वेद व्यास जी महाराज ने विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र व्यास पूर्णिमा के दिन लिखना प्रारंभ किया था। महाभारत व्यास पूर्णिमा के दिन पूर्ण हुआ था और देवताओं ने उस दिन को आशीर्वाद दिए थे, तब से व्यास पूर्णिमा मनाई जाती। आशीर्वाद दिए थे कि आज के दिन जो साधक आचार्य उपासना करेगा, आचार्य को संतुष्ट करके अपना आध्यात्मिक मार्ग का निर्णय कर लेगा, उसको वर्ष भर के सत्कर्म करने का फल मिलता है। तब से ये व्यास पूर्णिमा बड़े उत्साह से उल्लास से, मनुष्य भारतवासी तो ठीक लेकिन भारत से पर ऊपर के लोक में यक्ष गंधर्व किन्नर और जो ऊपर के लोकों में योगी पुरुष रहते हैं वे लोग भी इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं। ये तपश्चर्या का दिन है, तपश्चर्या का उत्सव है, और उत्सव तो हम मनाते लेकिन व्यास पूर्णिमा हमें मनाती है कि जन्मों जन्मों से इधर उधर घूमते हुए जीव, अब तू अपने राम में आ जा, अपने ज्ञान में आ जा, अपने जीवनदाता की ओर आ जा। जैसे माँ बच्चे को मनाती है, इधर आ जा बेटा, अब बहुत खेल लिया, मिट्टी में मैला हो गया, गंदगी लग, पूर्णिमा हमें मनाकर हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करके अमानित्व अदाम्भित्व आदि सद्गुण भर के आचार्य उपासना आदि का मार्गदर्शन देकर हमें आचार्य के अनुभव को पचाने की योग्यता प्रदान करने की कृपा करती है व्यास पूर्णिमा। तो भगवान कहते हैं अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अपने मन में कभी तूफान चलता है, कभी संदेह आता है, कभी ये आता है, लेकिन मन के साथ जुड़कर इधर उधर के टक्करें खाने में तो युग बीत गए, कभी कभी मन के कहने में न चलकर मन का साक्षी होने का अभ्यास करें। मन जब उद्विग्न हो अथवा साधन बदन भजन से गिर गया हो अथवा कुसंगता के कारण साधन भजन छूट गया हो तो ये व्यास पूर्णिमा के प्रसंग पर महोत्सव पर फिर से साधक नया संकल्प करके चलते हैं। ये व्यास पूर्णिमा के बाद आत्मरामी संत एक ही जगह पर ठहर कर, मठ मंदिरधारी संत एक ही जगह पर ठहर कर नए ग्रंथों का आरंभ करते, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों का पठन पाठन और मनन करते हैं। आप अपने जीवन में कुछ न कुछ छोटा बहुत नियम पकड़ लीजिए, ऑफिस में से कागज लेकर वो नियम लिख लेना, हो सके तो कल यहाँ आते समय उस नियम के कागज को यहाँ छुआ कर अपने पास रखें मन को याद दिलाने के लिए। ऐसा कोई नियम ले लो कि भाई हर रोज इतना जप करूँगा, इतना प्राणायाम करूँगा, हफ्ता में इतने घंटे कम से कम मौन रहूँगा, महीने में एकाध दिन अथवा दो दिन या पांच दिन जो अपनी योग्यता ईश्वर के लिए निकालूंगा, साल में इतने दिन अज्ञातवास एकांतवास अथवा धर्म के प्रचार के निमित्त इतने दिन वर्ष में निकालूंगा, आचार्य को संतुष्ट करने के लिए आचार्य के देवी कार्य में गुरु के देवी कार्य में इतना समय शक्ति का सत्वय करके हम सत पद को पाऊंगा। इस प्रकार का कोई न कोई नियम व्यास पूर्णिमा के दिन जो साधक लेता है और ब्रह्मवेता रूपी व्यास को अपने हृदय सिंहासन पर जल्दी से जल्दी देखना चाहता है तो देवताओं का संकल्प गुरुओं की कृपा और साधक का पुरुषार्थ मिलकर वो कार्य शीघ्र ही सिद्ध होता है। चित्त में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी अच्छा संग मिलता है, कभी बुरा संग मिलता है। मनुष्य इतर प्राणी तो कर्म का फल भोगने की परंपरा में प्रकृति से प्रेरित होकर घसीटे जाते, लेकिन मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता मिली है। 5 वर्ष के बालक तक प्रकृति का प्रभाव विशेष रहता है, फिर प्रकृति अपना प्रभाव कम करती है और मनुष्य को स्वतंत्रता बख्शती है। और मनुष्य प्राणी है, या तो उन्नत होता है या तो अवनत होता है। उन्नति करें तो ठीक है, लेकिन अवनति पतन न हो, इसलिए एक जीवन में नियम बना ले। जैसे चिड़िया है, 50 वर्ष पहले जैसा जीती है अभी भी ऐसा ही घोंसला बनाती। कौआ है, कोयल है और पक्षी है या पशु है, 5-25 वर्ष पहले जैसा जीते थे, अपना घर बनाते थे, ऐसा ही जी रहे। लेकिन मनुष्य ने तरक्की की तो मनुष्य कभी पतन की ओर भी जाता है, आसुरी स्वभाव का फैलावा हो जाता है, द्वैत के संस्कार का फैलाव हो जाता है, जातिवाद का फैलावा हो जाता है, मेरे तेरे का कुसंस्कार फैलाव का फैलावा हो जाता है, अद्वैत ज्ञान से दूर और द्वैत की उस दुर्गंध से जब समाज अंदर में अशांत होने लगता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि बाहर झगड़े, अशांति, संकीर्णता। जब आचार्यों का ज्ञान समाज में फैलता है तो एकत्व, शांति, प्रेम, उदारता, क्षमा, आर्जव, शौच आदि सद्गुण चित्त में आकर चैतन्य के प्रसाद से साधक को भर देते हैं। तो मनुष्य है या तो चढ़ता है या उतरता है। चढ़ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम चढ़े हुए साधक उतरे ने, इसलिए साधक के जीवन में एक ऐसा नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1000 बार गुरु मंत्र का जप करूंगा, इष्ट मंत्र का जाप करूंगा। तो फिर उन्नति तो करेगा जितनी हो कर सके, अवनति से उसका मन उसको बचाएगा, उसका साधन उसको बचाएगा, उसका जप उसकी रक्षा करेगा। तो व्यास पूर्णिमा के दिन साधक को आने वाले वर्ष के लिए, जैसे व्यापारी दिवाली में चौपड़े देखता है और फिर आने वाले वर्ष के लिए कुछ प्लानिंग कर लेता है, फैक्ट्री वाला कुछ प्लानिंग कर लेता है, ऐसे ही साधक अपने आध्यात्मिक ओझ को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्ष में ये करूंगा और ऐसा ऐसा जीवन को उन्नत करने के लिए दृढ़ निश्चय करूंगा और ये नियम लूंगा। तो जीवन में कोई न कोई ऐसा सात्विक नियम हो ताकि पतन के समय भी हमारी रक्षा करे। मनुष्य में बहुत सारी शक्ति है। हमारे 3 शरीर हैं, सुबह हमने सुना था, ये जो शरीर दिखता है वो आदि भौतिक शरीर है। दूसरा, इसके अंदर जो है मन शरीर है, मन का किया होता है, तन का, तन तो छाया मात्र है। तो आदि भौतिक शरीर 50-60 साल जीकर यहीं शांत हो जाता है, 70-80 साल, लेकिन मन शरीर तो जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता, साथ में ही रहता। मन शरीर तब तक रहता है जब तक हमने चिन्मय शरीर का साक्षात्कार नहीं किया, अर्थात तन को और मन को सत्ता, स्फूर्ति और चेतना देने वाला जो चैतन्य स्वरूप राम है, चैतन्य स्वरूप परमेश्वर है, उस परमेश्वर स्वरूप को, अपने परमेश्वर स्वभाव को नहीं जाना, तब तक जीव बिचारा भटकता रहता है। फिर चाहे कितना धन मिल जाए, कितना मान मिल जाए, कितना संयम आ जाए, कितनी सत्ता मिल जाए, कितनी प्रसिद्धि मिल जाए, कितना पुत्र और कलत्र का सुख मिल जाए, आखिर आद्य शंकराचार्य कहते हैं ततः किम, ततः किम, इससे क्या, आखिर क्या। तो जो सत शिष्य हैं वे आचार्य उपासना में अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को लगाकर आचार्य तत्व में टिक जाते हैं। शिष्य में शिष्यत्व रहे तो शिष्य गुरुत्व का प्रसाद पाता है, गुरु में गुरुत्व रहे तो गुरु शिष्यों को गुरु तत्व का प्रसाद चखाता है। प्रसाद पाने के अधिकारी वे साधक शिष्य कहे जाते हैं और प्रसाद आध्यात्मिक प्रसाद बांटने का जिनमें सामर्थ्य है वे गुरु कहे जाते हैं। ऐसे सद्गुरु और सत शिष्यों की जो महफिल है वो व्यास पूर्णिमा का महोत्सव है।
Thank you.
आचार्य उपासना है, गुरु के नजीक आने का प्रयोग है, उपमान समीप आसन, समीप आसन, समीप बैठना, जहां आचार्य ब्रह्मवेता गुरु भगवान कृष्ण और शिव जहां बैठते हैं उनके समीप बैठना माना ध्यान करना। संसार के आकर्षणों से आपको हटाकर, संसार की तुच्छ इच्छाओं से हटाकर, अनिच्छित पद में अमनी भाव को प्राप्त करके अपने परमेश्वर स्वभाव में स्थित होना, समझो आचार्य के साथ बैठना है। हम गुरुओं के साथ बैठ रहे हैं, हम श्री कृष्ण और शिव के साथ बैठने का यत्न कर रहे हैं। जहाँ शिव बैठे हैं, जहाँ कृष्ण बैठे हैं, जहाँ दत्तात्रेय बैठे हैं, जहाँ एकनाथ जी बैठे हैं, जहाँ आद्य शंकराचार्य बैठे हैं, जहाँ तोतापुरी गुरु बैठे हैं, उसी आत्मदेव में हम बैठ रहे हैं। उसी निसंकल्प दशा में, निराकार निरंजन, जिसका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई पूर्व है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है, ऐसा जो अनंत है, बड़ा में बड़ा है आत्मदेव गुरु, उसी गुरुपद में गुरु पूर्ण है, आदि अंत रहित है। इसलिए गुरु के उत्सव को गुरु पूर्णम बनाते, जैसे पूर्णम का चांद पूर्ण खिलता है, ऐसे गुरु तत्व के अनुभव को पाया हुआ साधक का चित्त भी पूर्ण खिलता है उस परमात्मा प्रसाद से। जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो, प्रभु तुम्हारी जय हो। अलौकिक आचार्य उपासना, सब तीर्थों का जल लाकर मन ही मन सोने के कलश में भरकर, गुलाब के पानी को मिश्रित कर, मैं मेरे गुरुदेव को गुरु चरणों को पखाल रहा हूं। मन ही मन हम गुरु पूजन किए जा रहे हैं। अपने सुंदर स्वच्छ वस्त्रों से पूछ पाछ कर हम चंदन लेप किए जा रहे हैं, तिलक किए जा रहे हैं, पुष्पों की माला अर्पित किए जा रहे हैं। एक टक उनकी ओर निहारते निहारते अपने चित्त की एकाग्रता बढ़ाए जा रहे हैं, और जो जो एक टक निहारते निहारते चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, त्यों त्यों हम आचार्य के उस ब्रह्मवेता भगवान तत्व के निकट हैं, जिनकी गुरुओं में श्रद्धा है, गुरुओं के हृदय से उनको भगवत तत्व ही तो भगवान अपना ही प्रसाद आप देता है। जिनकी अटूट श्रद्धा है, अथक पुरुषार्थ है, उनको ब्रह्मवेताओं के हृदय के द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ही तो प्रसाद प्राप्त होता है। हम उस परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के प्रसाद को पचाने की योग्यता और पाने की चेष्टा कर रहे हैं।